पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र पर गुस्सा करती है और उसे कमरे में बंद करने के लिए डांटती है। रुद्र रूही को बताता है कि वो उसकी है और फिर डिनर के बाद दोनों के बीच में कुछ घटनाएं होती हैं। इस अध्याय में रूही रुद्र को खाना खिलाता है और रूही अनिच्छा से ऐसा करने के लिए मान जाती है। अगली सुबह रूही कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन रुद्र उसे जाने नहीं देता। रूही परी से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है और फिर वो रणविजय जी से मदद मांगती है, लेकिन रुद्र रूही को कमरे में चलने के लिए कहता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 77। अब आगे। इतना बोल वे रूही को ले जाने लगता है, जिसे देख रूही फिर से रुद्र के हाथों से अपना हाथ छुड़ा बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही इस जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ, इसलिए मैं अपने अनाथ आश्रम जा रही हूँ। इतना बोल वे जाने लगती है। वहीं रुद्र, जो बार बार रूही के जाने वाली बात पर इरिटेट हो गया था, वे रूही को जाते हुए देख उसे रोकते हुए बोला, रूह तुम्हें जाना है ना, तो जाओ। रुद्र की इस बात को सुनकर रूही के जाते हुए कदम अपने आप रुक जाते हैं। वहीं बाकी सब भी रुद्र की बात सुनकर शौक थे, क्योंकि रुद्र ने जिस तरह से रूही के मर्जी के खिलाफ शादी की थी, उन्हें ये कभी भी नहीं लगा था कि रुद्र रूही को कभी भी इतनी आसानी से जाने देगा। वहीं रुद्र जब रूही को रुकता हुआ और बाकी घर वाले के रिएक्शन को देखता है, तो उसके होठों के कोने हल्के मुड़ जाते हैं, जिसे वे जल्द ही छिपा रूही को देख अपनी सर्दावाज में बोला, रूह तुम्हें जाना है ना, तो जाओ। इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ना ही तुम्हारे पीछे तुम्हें लेने आऊंगा, क्योंकि इस बार अगर तुम अपनी मर्जी से जा रही हो तो वापस भी तुम अपनी मर्जी से ही आऊंगी, वे भी कुछ ही घंटों में। पर एक बात याद रखना रू, अगर तुम इस बार वापस आई तो कभी भी तुम्हारी जुबान पर यहां से जाने की बात नहीं आनी चाहिए। रुद्र ने इतना बोला ही था कि रूही रुद्र को देख बिना डरे बोली, मैं यहां कभी भी वापस नहीं आऊंगी, समझे तुम। इतना बोल वे रुद्र की आगे की कोई भी बात सुने बिना वहां से चली जाती है। वहीं रूही के जाने के बाद रुद्र भी अपने कमरे में आ जाता है और किसी को कॉल कर कुछ कहता है। उसके बाद कॉल काटकर एक जुनून के साथ बोला, रू तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम्हें आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। इतना बोलवे एक डेविल स्माइल करने लगता है। वहीं रूही के जाने से सब परेशान और दुखी नजर आ रहे थे, मगर दादाजी के चेहरे पर चिंता की सिकन थी, क्योंकि रुद्र के बोलने के अंदाज से वे समझ गए थे कि रुद्र जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है जो रूही के लिए सही नहीं है। इसलिए उन्हें रूही की चिंता हो रही थी, पर वे जानते थे कि वे अब रुद्र को चाहकर भी कुछ करने से रोक नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ देवांश के ऑफिस में। देवांश अब तक ऑफिस आ चुका था। कैबिन में पहुंचते ही वे देखता है कि उसका असिस्टेंट मयंक वहां पर खड़ा है, जिसे देख वे अपनी किंग साइज चेयर पर बैठते हुए बोला, बोलो क्या बात है। देवांश की बात सुनकर मयंक बोला, बॉस आपकी एक घंटे बाद मीटिंग है, मिस दिशा आज भी छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने आया था। देवांश जैसे ही मयंक की बात सुनता है कि दिशा फिर से छुट्टी पर हैं, तो वे मयंक को देख गुस्से में कहता है, किसकी परमिशन से वे छुट्टी पर हैं, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, उसे अभी के अभी ऑफिस में आने के लिए बोलो। देवांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर मयंक डरते हुए बोला, बॉस मिस दिशा ने कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ली है, जिस तरह बाकी एम्प्लॉय को महीने में दो छुट्टी अलाउ है, उसी तरह मिस दिशा भी सिर्फ अपने हिस्से की ही छुट्टी ली है और उन्होंने मुझे सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने को बोला था, उसके बाद तुरंत ही कॉल काट दिया। मयंक की बात सुनकर देवांश गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोला, वे बाकी एम्प्लॉय में नहीं आती, इसलिए बिना मुझसे परमिशन लिए वे छुट्टी नहीं ले सकती, उसे अभी के अभी कॉल करो और ऑफिस आने को कहो। देवांश की इतनी ज्यादा गुस्से से भरी आवाज सुनकर मयंक अब आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वे आगे कुछ भी कहेगा तो आज शायद ही वे जिंदा बच पाए, इसलिए वे अपना सर हां में हिलाकर तुरंत देवांश के कैबिन से भाग जाता है। वहीं मयंक के जाने के बाद देवांश अपनी आंखों में दिशा के लिए गुस्सा लिए बोला, गुड गर्ल तुम हमेशा ऐसा काम क्यों करती हो जिसके मुझे गुस्सा आए, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मेरा एक पल भी रहना मुश्किल हो जाता है तो क्यों मुझसे दूर भागती रहती हो। गुड गर्ल तुम धीरे धीरे बैड गर्ल बनती जा रही हो, लगता है कि तुम्हें इसके लिए सजा देनी ही पड़ेगी, जिसके तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता गुड गर्ल, अब मुझे जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिसके तुम मेरे करीब रहो हमेशा हमेशा के लिए। वहीं दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में। रूही खुशी खुशी दिशा से मिलने के लिए अनाथ आश्रम पहुंचती है। वे आज काफी ज्यादा खुश थी कि अब रुद्र उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा, ना ही उसे अपने साथ जबरदस्ती रहने को बोलेगा। अब वे भी पहले की तरह अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी और खुशी खुशी दिशा के साथ रहेगी। लेकिन जैसे ही वे अनाथ आश्रम पहुंच सामने का नजारा देखती है, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अनाथ आश्रम के जितने भी लोग थे सबके सब अनाथ आश्रम के बाहर खड़े थे, और कुछ लोग जो कि देखने में ऑफिसर लग रहे थे वे अनाथ आश्रम के बाहर बड़े बड़े ताले लगा रहे थे। वहीं दिशा और सरोजनी जो कि अनाथ आश्रम की केयरटेकर थी, वे उन ऑफिसर को बार बार कुछ समझाने की और अनाथ आश्रम में इस तरह से ताला लगाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख रूही परेशान होते हुए तुरंत दिशा के पास जाकर बोली, दी क्या हुआ, ये सब यहाँ क्या हो रहा है और सारे लोग यूं बाहर क्यों खड़े हैं? रूही को यहाँ देख दिशा पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर रूही को देख बोली, पता नहीं रूही, ये ऑफिसर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका कहना है कि इस अनाथाश्रम पर हमारा अब कोई हक नहीं है, क्योंकि इस अनाथाश्रम को किसी ने खरीद लिया है और वे नहीं चाहता कि यहाँ पर हम में से कोई भी यहाँ रहे, इसलिए ये यहाँ पर ताला लगा रहे हैं और किसी को भी यहाँ रुकने नहीं दे रहे। दिशा की बात सुनकर रूही बोली, दी ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप रुकिए, मैं इनसे बात करती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि ये लोग हमें यहाँ से कैसे निकालते हैं। इतना बोल वे तुरंत उन ऑफिसर के पास जाकर बोली, सर आप इस तरह हमारे अनाथ आश्रम पर ताला नहीं लगा सकते, अगर आप यहाँ इस तरह ताला लगा देंगे तो हम जैसे अनाथ लोग कहाँ पर रहेंगे? रूही की बात सुनकर वे ऑफिसर काफी रिस्पेक्ट के साथ रूही से बोला,
सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिनकी ये जमीन है उन्होंने हमें तुरंत ये अनाथ आश्रम खाली करने को कहा है, इसीलिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर उनकी बातों को मानने से इनकार नहीं कर सकते।